आज 1 जून 2020 का दिन है। आपके लिए ये दिवस भाग्यशाली हो तथा आप अपने को इस दिवस के लिए कुछ ऐसा सोचे जिससे कि भविष्य में आपका कल्याण हो। जय जय श्री महाराज जी। मंगलाचरण तब कथमितम तत्व जीवनम कवि भरेतम कलम शाप श्रवण मंगलम श्रीमदातम जीवनती ए भूविदा जना। श्रीमद भागवत 10:31 में प्रभु तुम्हारी लीला तथा अमृत तप्त जीवों के लिए जीवन स्वरूप है, यानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को हरने वाली है, उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर तथा शुभ स्थित है जो तुम्हारी इस मधुर लीला कथा का गान करते हैं। वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता है। भक्तजन, आज मैं आपको नरेंद्र एवं ठाकुर दास की संन्यास दीक्षा की ओर ले जाऊंगी। प्रिय भक्तजन, गीता अध्याय 18 श्लोक 41 में भगवान कहते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शुद्र नाम च परम तप तमानी प्रभितानी स्वभाव पर भय गुणे। ये परंतप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शुद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए तीनों गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। श्रीमद् भगवत गीता में तथा हमारे वैदिक साहित्य में वेदों में कई बार बताया गया है कि 4 आश्रम हैं और 4 वर्ण हैं। 4 आश्रम कौन से हैं? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और वर्ण कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कहते हैं कि ब्राह्मण का जन्म भगवान के मुख से, क्षत्रिय का भुजाओं से, वैश्य का पेट से और शूद्रों का चरणों से हुआ है। कुछ भी हो, भगवान श्री कृष्ण ने भारतीय संस्कृति में 4 वर्ण तथा 4 आश्रम स्थापित करके भारतीय संस्कृति को महान बनाया है। आज हम संन्यास आश्रम की ओर जाते हैं। संन्यासी कैसा होना चाहिए? समूह नमस्तपा सोच शांति आज में बच ज्ञान विज्ञान मस्तिकम कर्म स्वभाव। गीता अध्याय 18 श्लोक बता रही। मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब के सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है या सन्यासी को करने चाहिए। प्रिय भक्तजनों, 11 फरवरी 1983 को महाशिवरात्रि का पर्व था, जिसकी तैयारियां हो रही हैं। एकाएक श्री महाराज जी ने मुझे बुलाया और कहा, इस बार महाशिवरात्रि को नरेंद्र को संन्यास दीक्षा देनी होगी, उसे कहो कि वह संन्यास के लिए तैयार हो जाए। जब नरेंद्र को श्री महाराज जी की इच्छा का पता चला तो वह विरोध करने लगा और संन्यास नहीं लेगा ऐसी इच्छा व्यक्त की, परन्तु यह उसके माता जी संबंधी आए जिन्होंने कहा कि आपको बड़ा सौभाग्य है, ये श्री महाराज जी के चरणों में आपको संन्यास मिलेगा। और साथ ही देखो बहन को, ये तो एक महिला है और कब से यहाँ संन्यास लेके रहती है। एक फरवरी को मैं भोजन पका रही थी तो नरेंद्र ने आकर कहा कि ठाकुर दास आ रहा है, कुछ देर में एक लंबा पतला 20 वर्षीय युवक आया और उसने मुझे प्रणाम किया। मैं ठाकुर को भीतर श्री महाराज जी के पास ले गई। श्री महाराज जी से देख कर प्रसन्न हुए। अब ठाकुर दास भी मंदिर में रहने लगा। उसने बताया कि जब वह 1976 से यहाँ से गया था, तभी से वह कोटगढ़ आदि के स्थानों में इधर उधर घूमता रहा, घर नहीं गया था। अब माँ वैष्णो की कुछ सजीव निशान से मिलने पर मैं यहाँ आया हूँ। उसने बताया कि उसके गाल पर एक फोड़ा हुआ था, तो कई इलाज करने पर भी ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन मन में आवाज आई कि माँ से वैष्णो देवी से प्रार्थना करूँ, प्रार्थना की, मगर मेरे मुंह का फोड़ा ठीक हो जाएगा तो माँ मैं तेरे दरबार में हाजिर हो जाऊंगा। गैर योग से उसी दिन एक व्यक्ति ने फोड़े को कसकर दबाया और विवाद निकाल दिया, जिससे फोड़ा धीरे धीरे ठीक हो गया। उसने आगे कहा, अब मैं एक महीना यहाँ रहूँगा। 11 फरवरी को महाशिवरात्रि और नरेंद्र की संन्यास दीक्षा का समारोह है, इसके लिए सब प्रकार की तैयारियाँ हो गई। ठाकुर दास भक्तों के घर गए और संन्यास समारोह का निमंत्रण ले आए। 11 फरवरी को प्रातः महाशिवरात्रि का उत्सव आरंभ हुआ। महामंत्र ओम नमः शिवाय का पाठ प्रारंभ हुआ। लगभग 9 बजे नरेंद्र के संन्यास का समारोह भी शुरू हो गया। सर्वप्रथम नाई ने सिर के बाल उतारे, फिर स्नान करके गेरुआ वस्त्र धारण किया और श्री महाराज जी ने कहा कि माँ से भिक्षा ले लो। मैंने विवेक को श्री महाराज जी के अनुसार भिक्षा दी और जो मंत्र महाराज जी ने मुझे बताया था वो मंत्र मैंने विवेक जी को दे दिया। दीक्षा ग्रहण के पश्चात सभी भक्तों ने बारी बारी नरेंद्र को संन्यास की दीक्षा दी और उनके भावी जीवन के लिए मंगल कामनाएं भी की। श्री महाराज की इच्छा अनुसार उन्हें दीक्षांत नाम विवेक दिया गया। गेरुआ पहन कर विवेक श्री महाराज जी को प्रणाम करने आए। श्री महाराज जी ने मन प्राण से विवेक को सच्चा सन्यासी बनने का आशीर्वाद दिया। सारा दिन खुशियाँ मनाते हुए भक्त वहाँ से भक्ति मना रहे हैं। रात्रि जागरण हुआ। दूसरे दिन 12 फरवरी प्रातः पाठ संपन्न करके हवन और कन्या पूजन हुआ तथा भंडारा भी किया गया। नरेंद्र के संन्यास दीक्षा देखकर ठाकुर दास के मन में एक इच्छा हुई कि वह यदि यहाँ संन्यास दीक्षा ले ले तो ठीक होगा, और उसने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। श्री महाराज जी ने कहा, संन्यास के लिए बीड़ी पीना छोड़ना होगा और जब आप लगातार एक महीना बीड़ी नहीं पिएंगे तब आपको बाबा संन्यास की दीक्षा दे देगा। ठाकुर दास सहमत हो गया। दिन दिनों बीड़ी पीने की लत से ग्रस्त था। ये गैर इच्छा जो थी ठाकुर दास ने 15 फरवरी से 15 मार्च तक बीड़ी नहीं पी। इच्छा होने पर भी मन को रोका। अब श्री महाराज जी ने देखा कि ठाकुर दास अपने मन को रोक सकता है, इसलिए उसे संन्यास दीक्षा के लिए तैयार किया गया। ठाकुर दास की वृत्ति इच्छा से अप्रैल में श्री रामनवमी के दिन ठाकुर दास को संन्यास की दीक्षा दी गई। नवरात्रि कार्यक्रम पाठ जप करके श्री रामनवमी के दिन प्रातः सभी भक्तों को बुलाकर दीक्षा समारोह हुआ। सर्वप्रथम केश उतारे गए, फिर स्नान के पश्चात गेरुआ वस्त्र धारण कर मैंने उन्हें दीक्षा दी। ठाकुर दास को दीक्षांत का नाम कुमार दास दिया गया। श्री महाराज को ये नाम कुमार दास बहुत अच्छा लगता था। वे कई बार घर सुनी और उनके पुत्र कुमार दास की कथा मुझे बड़े चाव से सुनाते थे। एक बार श्री महाराज ने इसी संदर्भ में ये कथा इस प्रकार सुनाई। भक्त भी जनता की सेवा के लिए अपने घर में भंडारा लगाया करते थे। उनके घर में आने वाले अतिथि कभी भूखा नहीं जाते थे। एक बार घर में अन्न का दाना नहीं था, धन का भी अभाव था, तो कबीर ने कमाल दास को राजा के यहाँ सेंध लगाने की आज्ञा दे दी। वे स्वयं भी साथ में सेंध लगाकर कमाल दास राजा के खजाने से धन ले आए और कबीर को दे दिया। लेकिन उस जिसमें राजा के सिपाहियों ने कमाल दास की दोनों टांगे पकड़ ली और इस ओर कबीर ने अपने लड़के का सिर पकड़ लिया। चिंता तानी होने लगी तो कबीर के लड़के का सिर धड़ से अलग हो गया। कमाल दास का सिर धड़ कबीर के हाथ आया और धड़ राजा के सिपाहियों के हाथ। कबीर सिर को घर ले आए और उसे एक संदूक में छुपा लिया। घर को सिपाही राजा के पास ले गए। राजा की आज्ञा से धड़ चौराहे पर लटका लिया गया ताकि कोई उसे पहचान ले जाए। इधर कबीर ने कहा कि उसे छुपा कर ही रखना होगा और कबीर की भक्ति की परीक्षा के लिए भगवान अतिथि मन उनके घर आए। मैं कहा कबीर आपके यहाँ भोजन खाएंगे यदि आपने जो संदूक में बंद करके रखा है किसका भोजन लोई बनाएगी तो मैं भोजन करूँगा। ये सुन लोई रोने लगी तो कबीर ने अपने अतिथि को सब बात बता दी और जब संदूक खोला तो उसमें कमाल दास को जीवित पाया। इस प्रकार से महाराज बड़े संचित से इस कथा को सुनाते गए और हम खुश होकर सुनते गए। अब ये दो युवा सन्यासी विवेक तथा कमाल मंदिर का कार्य संभालने लगे। कमाल दास के संन्यास ग्रहण करने के दूसरे दिन ही उसका मामा और दादा भी मंदिर में आए, परंतु दूसरे सन्यासी देख कर बहुत दुखी हुए और घर लौट गए। कुछ दिनों के पश्चात कमाल दास के माता जी पिताजी तथा कुछ अन्य रिश्तेदारों के घर वापस ले जाने के लिए आए। उन्होंने मुझे बहुत कुछ कहा और कहा ये पहली संतान है, माँ बाप का सहारा है, इसे वापस भेज दो। मैंने कहा जैसी आपकी इच्छा। अब कमाल दास बोल पड़े मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, अगर आप लोग जबरदस्ती करोगे तो मैं सामने वाली नदी में कूद जाऊंगा। कमाल की इस बात को हाल के रिश्तेदार कहने लगे कि ये बात कह रहा है तो हमें वापस जाना चाहिए और जो रिश्तेदार लौट गए। कमाल की माता दो चार दिन मंदिर में रही और आश्वस्त हुई और श्री महाराज जी से आशीर्वाद लेके कि कमाल दास कभी कभी माँ के पास ही आएगा घर लौट गई। श्री महाराज ने कमाल दास को कहा कि वे वर्ष में एक बार अपनी माँ की सुधि लेने के लिए शिमला जाया करे। इसी आज्ञा स्वरूप कमाल दास प्रति वर्ष शिमला जाता है। श्री महाराज जी ने दो दिए युवकों को न्यास की दीक्षा दी और उन्हें जन सेवा के लिए तैयार कर दिया। कमाल दास को आरती पूजा तथा मंदिर का अन्य कार्य सौंप दिया और विवेक को आज्ञा हुई कि वह दैनिक अन्न सत्य चालू करने के लिए अन्न आदि इकट्ठा करे। अतः विवेक ने अन्न सत्य के लिए शहर में दुकान पर जाकर वार्षिक अन्नदान के सदस्य बनाए और काफी अन्न इकट्ठा भी कर लिया। इस प्रकार दोनों के परिश्रम से तथा श्री महाराज जी के आशीर्वाद से शीघ्र ही 1983 में दैनिक अन्न सत्य भंडारा चालू हो गया। श्री महाराज स्वयं भंडार जी में सोते और दिन के समय देखभाल करते और कमाल दास भंडार में जाकर भोजन आदि बनाते। विजय को अधिक समय मंदिर से बाहर ही रहना पड़ता था। इन्हीं शब्दों के साथ में आज अपनी इस मांग को विराम देते हुए गीता माँ